From the conference center at Temple Square.
Så läxa här att Temple Square är som mellan kändare se är Jesu musiker Kirjager ka antim dinoka santoka 185 mahasamelan hai jiske bashan karta Kirjager ke maha adhikariyon aur maha pad adhikariyon mein se chune gaye hain. Present view of North Ogden Utah ke prathmik gaikwandli ke bachchon ke sath dwara is sabha ka sangeet pradan kiya gaya hai. Bonneville distribution dwara is prasaran ko janta seva ka roop mein purti ki gayi hai.
President Dieter F.
Ogden Gereja ka pratham adhyaksha ke dusre salahkar is sabha ka sanchalan karenge. Bhaiyo aur behno, antim dinon ke santo ka Yeshu Masih ka Gereja ke 181st mahasamman ka dusre baithak mein tumhare swagat karte hain. प्रधान थॉमस एस मॉन्सन जो इस सम्मेलन के अध्यक्षता कर रहे हैं ने कहा कि मैं इस सभा का संचालन करूं. हम उन सभी को स्वागत करते हैं जो उपस्थित है या जो दूरदर्शन रेडियो या इंटरनेट के द्वारा भाग ले रहे हैं और कई लोगों जो दुनिया के बिना भागों में स्थित केंद्रों में देख रहे हैं. प्राथमिक संगीत के एक मंडली और प्लेजेंट व्यू और नॉर्थ ऑगडन यूटा के बच्चों द्वारा इस सभा के संगीत प्रदान किया जाएगा जिसे निर्देशन बहन वानिया वाई वाटकिंस द्वारा होगा जिनके साथ लिंडा मार्गेट ऑगन पर होंगी. इस सभा की शुरुआत गायक मंडली इसे गाने द्वारा शुरू करेगी गॉड्स डेली केयर और आई थैंक दी डियर फादर. फिर 70 के एल्डर वन यंको द्वारा प्रार्थना की जाएगी. प्रार्थना के बाद गायक मंडली फैमिलीज कैन बी टुगेदर फॉरएवर को गाएंगे.
Thank you. our beloved Father in heaven.
हमारे पिता परमेश्वर.
We come to thee with humility and gratitude.
हम आपके सामने आते हैं और आपके आभारी हैं कि आपने हमें इस जीवन को दिया और आशीर्वाद दिया. और हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपके पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के लिए जो वो हमारे लिए दिया है. और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जो सुसमाचार आपने वापस भेजा हमारे लिए, कि हम हमें वो सब जान सके और आशा मिले कि हम आपके पास वापस लौट सके, कि जब हम आपका आज्ञा का पालन करें. और हम इकट्ठा हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस के समय कि हम आपके आज्ञाओं के वाणी को सुन सके आपके भविष्यवक्ताओं से. हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे हृदय को खोलें, कि हम आपकी बातों को सुने, कि हम आपके विषय में सीखे और हमारे बयान आगे बढ़े. और हम बहुत आभारी हैं जो संगीत जो आपके बच्चों ने गाया है, आप इन बच्चों पर अपना आशीष सुनते हैं पिता परमेश्वर, कि आप कि इस दिन को वो याद रखे. और हम आप के आशीर्वाद को चाहते हैं कि हमें आपके भविष्यवक्ता प्रेसिडेंट थॉमस एच मॉन्सन के साथ रहे, कि वो अपना कार्य का आगे बढ़ाए, कि आपके राज्य को बनाए, और कि हम खुशहाली से आपके सुसमाचार के साथ आगे बढ़े इस जीवन में. और ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. आमीन.
President Henry B.
Aaron, I पुष्टिकरण मत के लिए गिरजाघर का महाअधिकारियों और क्षेत्रीय सत्र के प्रस्तुत करूं, जिसके बाद हम एल्डर डेविड ए. बेडना और नील एल. एंडरसन, जो 12 देवताओं के परिषद के हैं, से सुनने में खुश होंगे. उनके भाषण के बाद एल्डर ई. एन. एस. आर्डन, जो 70 के है. President Irene.
It is proposed that we sustain.
ये प्रस्तावित किया गया है कि हम थॉमस स्पेंसर मॉन्सन को यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के भविष्यवक्ता, पैगंबर, पत्रकर्ता और प्रथम के रूप में समर्थन करें. हेनरी बेनियन आयरन को प्रथम अध्यक्षता का प्रथम सलाहकार और डीटर फेडरिक उडोव को प्रथम अध्यक्षता के दूसरे सलाहकार के रूप में, जो सहमत हो है हो प्रकट करें. जो असहमत है अगर कोई तो प्रकट करें. प्रस्तावित किया जाता है कि हम बोयट केनेथ पैकर को 12 देवताओं के प्रसाद के प्रधान के रूप में समर्थन करें और इन्हें प्रसाद के सदस्यों के रूप में बोयट के पैकर, एल. टॉम पेरी, रसल एम. नेल्सन, डैलन एच. ओक्स, एम. रसल बैलर्ड, रिचर्ड जी. स्कॉट, रॉबर्ट डी. हेल्स, जेफरी आर. हॉलन, डेविड ए. बेडनर, क्विंटन एल. कुक, डी. टॉड क्रिस्टोफर्सन और नील एल. एंडरसन, जो सहमत है कृपया प्रकट करें. जो असहमत उसी तरह दिखलाइए. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम प्रथम अध्यक्षता के सलाहकारों और 12 देवताओं को भविष्यवक्ताओं, पैगंबरों और प्रतिकर्ताओं को रूप में समर्थन करें. जो असहमत है को अगर कोई उसी स्थान से प्रकट करे. एल्डर क्लोरियो आर. एम. कॉस्टर को 70 के परिषद के अध्यक्षता के सदस्य से मुक्त किया गया है, जो हमारे साथ मत में लियाबारी होने के लिए अभ्यक्त कर सकते हैं. कृपया प्रकट करें. ये प्रस्तावित किया गया है कि हम एल्डर टेड आर. कैलिस्टर को 70 के अध्यक्षता के सदस्य के समर्थन करें. सारे जो समर्थन करे कृपया प्रकट करें. जो असहमत कोई करते हैं. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम एल्डर्स गैरी जे. कोलमन, रिचर्ड जी. हिंकली, योशिहिको किकुची, कार्ल बी. प्रैड और सिसिल ओ. सैमुएलसन 70 के पहले कोरम के सदस्य से मुक्त करें और उन्हें सामान्य महाअधिकारियों नियुक्त करें. ये भी प्रस्तावित किया गया कि हम एल्डर्स वन यंग को, लोअल एम. स्नो और पॉल के. सब्रास्की को सत्तों के दूसरे कोरम के सदस्य से मुक्त करें. इन भाइयों की बढ़िया सेवा के लिए, जो हमारे आभार को अभिव्यक्त करने की इच्छा करते हैं, कृपया प्रकट करें. एल्डर्स रैल्फ डब्ल्यू. हार्डी जूनियर, जॉन हेम. हंसमैन सीनियर, अलेक्जेंड्रा एन. मैनहोज और जे. विलर्ड मैरियट जूनियर को क्षेत्र 70 के पणों से मुक्त करें. यह प्रस्तावित किया गया है कि हम उन्हें प्रसाद सेवा के लिए मत की आभार को दिया जाए. जो समर्थ करें कृपया प्रकट करें. यह प्रस्तावित किया जाता है कि हम महाअधिकारियों, क्षेत्रीय सत्र और महासहायक अधीनस्थों का समर्थन करें, जैसे वर्तमान समय में जो प्रकट जो असहमत है वो उसी तरह के प्रकट करें. प्रधान मानसन, जहाँ तक मैंने देखा, सम्मेलन केंद्र में मतदान सर्वसम्मत रहा. धन्यवाद.
Devotion and prayers. We will now be pleased to hear from Elder Bednar.
As we study,
जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार को पढ़ेंगे, सीखेंगे और जिएंगे, इन चीजों की विधि अक्सर शिक्षाप्रद हो जाती है. सोचिए, हमने क्या सीखा था धार्मिक प्राथमिकताओं के बारे में, जब उद्धारकर्ता का सुसमाचार पूर्ण रूप से अंतिम दिनों में प्रस्थापित हुआ था. पवित्र भाग में जोसेफ स्मिथ ने आनंद पिता और यीशु मसीह को देखा और उनसे बातें की. अन्य घंटों से जोसेफ ने इस वर्तव और निरंतरण प्रतिकरण के सच्चे रूप से बारे में सीखा। इस शानदार सपने से शुरू हुआ पूर्ण समय का व्यवस्था और ये दुनिया के इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध वारदात रहा है। लगभग 3 साल बाद सितंबर 21, 1823 की शाम सच्ची प्रार्थना के जवाब में जोसेफ ने के कमरे में ज्योति बढ़ती गई जब तक वो दोपहर के प्रकाश से अधिक ज्योतिमय हुआ। उसके खाट के निकट एक पुरुष प्रकट हुआ, उसका नाम लिया और कहा कि वो परमेश्वर का भेजा हुआ दूत है और कि उसका नाम मोरनाय था। उसने जोसेफ को मोरमन धर्मशास्त्र के आगमन के बारे में बताया और फिर मोरनाय ने पुराने नियम की किताब मलकाई के शब्द की कहे जो जेम्स की विजन की भाषा में लिखा है। देखो मैं पुरोहित तो तुम्हारे लिए प्रकट करूंगा भविष्यवक्ता लाजा द्वारा प्रभु के महान और विनाशकारी दिन के आने से पहले, और वो बच्चों के हृदय में पिताओं के से किए गए विधर्ता रखेंगे। इस जवान भविष्यवक्ता के लिए मोरनाय के उद्देश्य में अंत में शामिल था दो खास विषय, पहला मोरमन धर्मशास्त्र और दो मलकाई के शब्द जो इलाजा की भूमिका को बदलाता था पुनस्तप्ता में। वो सब बातें जिसकी चर्चा परमेश्वर ने प्राचीन काल से अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। इस प्रकार पुनस्तप्ता के पहले वारदाताओं ने इस वर्तव का एक सही ज्ञान प्रकट किया, मोरमन धर्मशास्त्र के महात्माओं को दिखलाया और दोनों जीवित और मृतित के लिए मुक्ति और जीवन आनंद जीवन के कार्य के आशा के लिए। ये प्रेरित वारदात देवताओं से सबसे प्रमुख धार्मिक कार्यों का ज्ञान देता है। इलाजा पुराने नियम के एक विशेषता थे जिसके द्वारा कितने सारे चमत्कार हुए थे। उसने स्वर्ग को बंद किया ताकि 3.5 वर्षों तक इसराइल में बरसात नहीं हुई। उसने एक विधवा को का आटा और तेल दुगना किया, आटा और तेल दुगना दिया। उसने एक जवान लड़की को मौत से जगाया था और उसने स्वर्ग से आग बरसाया था बल्कि भविष्यवक्ताओं को चुनौती देने के लिए। इलाजा के मरणशील जीवन में वो एक भवंडर में स्वर्ग गए थे और प्रवृत्त हुए थे। हम अंतिम दिन प्रतिकरणों से सीखते हैं कि इलाजा के पास मेलकिज़ेदेक प्रस्तुत की बढ़ने की शक्ति और वो आखिरी विश्वक्ता था जिसके ऐसा किया था यीशु मसीह के समय से पहले। विश्वक्ता जोसेफ ने समझाया इलाजा का आत्मा शक्ति और नियुक्ति है कि आपके पास शक्ति हो मेलकिज़ेदेक प्रस्तुत की पूर्णता की चाबियों को रखना और परमेश्वर की राज्य के सही सभी धर्म विधियों को। ये पवित्र बंधने की शक्ति जरूरी है ताकि पुरोहित धर्म विधियां दोनों धरती और स्वर्ग में कानूनी रहे। इलाजा मोसेस के साथ प्रकट हुआ परिवर्तित होने के पहाड़ पर और इस अधिकार को पीटर जेम्स और जॉन को दिया। इलाजा फिर से मोसेस और अन्य लोगों के साथ अप्रैल 3, 1836 में कर्टलैंड मंदिर में प्रकट हुए और वहीं चाबियां जोसेफ स्मिथ और ओलिवेट कार्री को दिया। धर्मशास्त्र में बतलाता है कि भविष्यवक्ता इलाजा जोसेफ स्मिथ और ओलिवेट के सामने खड़ा हुआ और कहा वो समय आ गया है कि जो मलकाय द्वारा कहा गया था जब वो प्रभु के महान और विनाशकारी दिन के आने से पहले भेजेगा। उसने कहा कि वो पिताओं को हृदय बच्चों के और मुड़ने आया है और बच्चों के हृदय पिताओं के ओर ताकि पूरी धरती पर श्राप का असर ना पड़े। प्रभु का महान और विनाशकारी दिन करीब है। बढ़ने की शक्ति, बांधने की शक्ति की पुनस्थापना इलाइजा द्वारा 1836 में जरूरी था, ताकि दुनिया को उद्धारकर्ता के दूसरे आगमन के लिए तैयार किया जा सके और इसी दुनिया भर में परिवार इतिहास के जान में दिलचस्पी आए। भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने कहा, सबसे महान जिम्मेदारी इस दुनिया में है जो परमेश्वर ने हमें दी है, वो है हमारे गुजरे हुए लोगों को ढूंढना, क्योंकि ये जरूरी है कि बांधने की शक्ति हमारे हाथ में हो, जिससे हमारे बच्चे और हमारे गुजरे हुए लोग बंधे जा सके पूरे समय के युग के लिए, एक युग जिसमें यीशु मसीह के दुनिया के शुरुआत हुआ था। इस कारण से परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें भविष्यवक्ता इलाइजा भेजता हूँ। जोसेफ ने और समझाया, मगर इलाइजा के आने का क्या इस लक्ष्य है या कैसे वो संपूर्ण होता है? चाबियां सौंपी है, इलाइजा की आत्मा को आना है, सुसमाचार को स्थापित होना है, परमेश्वर के संतों को इकट्ठा होना है, जायन को बनाना है और संतों को जायन के पहाड़ पर उद्धार करने के लिए चढ़कर आना पड़ेगा। मगर कैसे उन्हें जायन पर पहाड़ पर उद्धारकर्ता बनाएगा? अपने मंदिर बनाने से और जाकर सभी धर्म विधि को प्राप्त करने से, अपने सभी गुजरे हुए पूर्वजों के लिए, और यही वही जंजीर है जो पिताओं के हृदय को बच्चों से और बच्चों के हृदय को पिताओं से बांधे रखती है, जो इलाइजा की प्रचार लक्ष्य को पूरा करता है। एल्डर रसेल एम नेल्सन ने सिखलाया है कि इलाइजा की आत्मा पवित्र आत्मा का एक विश्वरूप है जो गवाही देता है कि पवित्र परिवार के दिव्य बनावट का पवित्र आत्मा का ये विशिष्ट प्रभाव लोगों को प्रसाद करता है, प्रोत्साहन कर देता है अपने पूर्वजों और परिवार सदस्यों को पहचने, जानने, करने और उसकी प्रार्थना करने के लिए। इलाइजा की आत्मा गिरजाघर के सदस्यों और गैर सदस्यों दोनों को प्रेरित करती है, मगर मसीह के पुनर्स्थापित गिरजाघर के सदस्य होने के नाते हमने विदा किया है और हमारी एक जिम्मेदारी है अपने पूर्वजों को ढूंढ निकालने की और उनके लिए मुक्ति की धर्म विधि करने की। वो हमारे बिना सिद्धांत को नहीं पहुंच सकते और ना तो हम अपने पूर्वजों के बिना सिद्धांत पूरा कर सकते हैं। इस कारण हम से परिवार इतिहास जान करते हैं, जांच करते हैं, मंदिर बनाते हैं और अन्य धर्म विधाओं को करते हैं। हम प्रभु की कारीगर उद्धार और आनंद जीवन के कार्य में, जिससे पूरी धरती को बचा सकते हैं शराब से। अब मैं उन जवान महिलाओं और पुरुषों और बच्चों के ध्यान को आमंत्रित करूंगा जो अभार्ती पीढ़ी के हैं, जैसे मैंने इलाइजा की आत्मा के महत्वपूर्ण गर करूंगा हमारे आज के जीवन में। मेरा संदेश पूरे गिरजाघर के लिए है, मगर खास करके तुम्हारे लिए। आप में से कई लोग सोच रहे हैं कि परिवार इतिहास कार्य सिर्फ बुजुर्ग लोगों के लिए है, मगर मैं जानता हूं उम्र का कोई दायरा नहीं है धर्मशास्त्र में या गिरजाघर नेताओं द्वारा को निर्देश में नहीं। तुम परमेश्वर के पुत्र हो और पुत्रिया हो, वादाली किए हुए बच्चे और राज्य के बनाने वाले। तुम्हें कोई उम्र पहुंचने का इंतजार नहीं करना है इस उद्धार के लिए, से मनुष्य जाति को मदद करने के लिए। प्रभु ने इन दिनों में देखें योग्य साधन बनाई है, जिससे हम इस कार्य को सीख सकते और प्रेम कर सकते हैं जो इलाइजा की आत्मा द्वारा प्रोत्साहित किया गया है। उदाहरण के लिए फैमिली सेच में वो रिकॉर्ड साधन और सेवाएं हैं जो आसानी से उपलब्ध है, व्यक्तिगत कंप्यूटर्स और अन्य उपकरणों द्वारा, जिससे लोग अपना परिवार इतिहास जान सके और लिख सके। ये साधन परिवार इतिहास केंद्रों में उपलब्ध है जो हमारे कई गिरजाघर इमारतों में है दुनिया भर में। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि फैमिली हिस्ट्री, फैमिली सर्च और अन्य औजार इस समय में सामने आए हैं, जब जवान लोग इतने परिचित हैं इतने सारे जानकारी टेक्नोलॉजी से। तुमने अपने फोन और कंप्यूटर से लिखते संदेश भेजते हैं सीखा है, जिससे प्रभु का कार्य तेज और पहले से हो सके। सिर्फ फोन अपने दोस्तों को फोन करने से नहीं, जो गुण और बुद्धि आज के युवकों में है, एक तैयारी है उद्धार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। मैं गिरजाघर के युवकों को निमंत्रण देता हूँ कि वो इलाजा की आत्मा को बारे में सीखे और अनुभव करे। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ अध्याय करके अपने पूर्वजों को ढूंढे निकाले के लिए और अपने आप को उनके लिए प्रभु की घर में बपतिस्मा देने के लिए जो आपके पूर्वजों को जरूरत चुके हैं, और मैं आपको मजबूर करूंगा कि आप और अन्य लोगों की सहायता करें। जब तुम इस निमंत्रण के विश्वास पर विश्वास करोगे, तुम्हारे हृदय पर तुम्हारे पिताओं और मुड़ेंगे। अब्राहम, आजक और जेपू को दिए गए वादे तुम्हारे हृदय में जागेंगे। तुम्हारा कल्पति आशीर्वाद जिसमें वंश की घोषणा है, तुम्हें इस पिताओं से छोड़ेंगे और ये तुम्हारे लिए उपलब्ध होगी। जब तुम इस पवित्र कार्य में भाग लोगे और इस प्रेम करोगे और अपने युवक उम्र जीवन और भर सुरक्षित रहोगे। माता पिता और नेताओं, कृपया अपने बच्चों और युवा की और युवा की सहायता करें इलाजा की आत्मा के बारे में और सीखे और उसको अनुभव करने में, मगर इस कोशिश को इतना सख्त या नियम अनुसार मत करें या बहुत ज्यादा जानकारी या प्रशिक्षण ना दे। युवकों को ढूंढने, परीक्षण करने और खुद सीखना का निमंत्रण दे। कोई भी युवक में मेरे बैठे चीजें कर सकते हैं, उन सीखने की गतिविधि को इस्तेमाल करके जो lds.org/familyhistory.org पर उपलब्ध है। एरोनिक पिस्टर परिषद और जवाब मिलेगा। कक्षा प्रधान सभी युवक को मदद कर सकती है। युवक के माता पिता और नेता, तुम सब आश्चर्यजनक रह जाओगे गिरजाघर के युवक को इन श्रद्धाओं में निपुण देखकर। वास्तव में तुम बहुमूल्य पाठ सीखोगे इन युवक से, इन साधनाओं को ठीक से इस्तेमाल करने के लिए। युवक बहुत मदद कर सकते हैं बुजुर्गों को जो बेचैन हैं। तुम भी अपने कई आशीर्वादों को गिनोगे जब युवक ज्यादा समय परिवार इतिहास कार्य और मंदिर सेवा में गुजरने और काम वीडियो गेम्स इंटरनेट के और फेसबुक में बिताएंगे। ट्रोय जैक्सन, जेरब होप और एंड्रू एलन एरोनिक पृष्ठ को रखने वाले हैं जो एक प्रेरित बिशप द्वारा नियुक्त हुए। अपने वार्ड में एक साथ परिवार इतिहास कक्षा पढ़ाने के लिए ये जवान पुरुष आप में से सैकड़ों की तरह है जो सीखने और सेवा करने की इच्छा करते हैं। ट्रोय ने कहा, मैं गिरजा घर आया करता था और सिर्फ यहाँ बैठा करता था, मगर अब मुझे एहसास हुआ कि गिरजा घर कुछ करने की जरूरत है। हम सब परिवार इतिहास कर सकते हैं। जेरन ने बताया कि जैसे कि ये सिर्फ नाम नहीं मगर सचमुच के लोग हैं। मेरी उत्सुक बढ़ती गई इन नामों को मंदिर ले जाने के लिए। और एंड्रयू ने कहा, मैं परिवार इतिहास इतने प्रेम और जोश से करता हूँ जितना मैंने नहीं सोचा था। जब मैं हर हफ्ते पढ़ने की तैयारी करता हूँ, मुझे अक्सर पवित्र आत्मा प्रोत्साहित करती पाठ में से कुछ तरीकों से करने के लिए। इससे पहले परिवार इतिहास डरावना था, मगर आत्मा की मदद से मैं अपनी नियुक्ति को पूरा कर सका और अपने वोट को कई लोगों को मदद कर सका। मेरे प्रिय जवान भाई और बहनों, परिवार इतिहास सिर्फ एक दिलचस्प प्रोग्राम या गतिविधि नहीं जो गिरजाघर द्वारा पेश किया गया है, बल्कि ये उदाहरण और आनंद जीवन के कार्य का जरूरी भाग है। तुम्हें इन दिनों के लिए तैयार किया गया है और तुम्हें परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना है। तुम इस धरती पर हो अभी इस विशाल कार्य करने के लिए। मैं गवाही देता हूँ कि इलाइजा धरती पर वापस आया था और पवित्र बंधन के अधिकार को पुनः स्थापित किया। मैं गवाही देता हूँ कि धरती पर जुड़ा हुआ स्वर्ग में है और मैं जानता हूँ कि उभरती पीढ़ी के युवक के पास भाग है महान कार्यक्रम। मैं ये गवाही देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमेन।
As we look into the eyes,
जब हम एक बच्चे के आंखों में देखते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र यहाँ पुत्री को देखते हैं जो हमारे साथ संसारिक जीवन के खड़े रहते हैं। ये पति और पत्नी का महान स्वभाव है जिन्हें बच्चे होते हम परिवार में और बच्चों में विश्वास करते हैं। जब पति और पत्नी को बच्चा होता है वे हमारे स्वर्ग के पिता के योजना के भाग में पूरा करते हैं धरती पर बच्चों के लाने के लिए। प्रभु ने कहा है कि उसके कार्य और उसके महिमा मनुष्यों के अमरशाली और आनंद जीवन के लाने के लिए है। परिवार को परमेश्वर से नियुक्ति मिली है। परिवार हमारे स्वर्ग के पिता की योजना मिलनकार है यहाँ धरती पर और स्वर्ग के जीवन तक। आदम और ईव को शादी के साथ जोड़ा के बाद धर्मशास्त्र बतलाता है और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनके कहा फूलों फलों और पदवी में भर जाओ। हमारे दिनों में भविष्यता और देवताओं ने बतलाया है कि वो जो पहले आज्ञा आदम और ईव को परमेश्वर में दिया था पति और पत्नी के तरह अपने संबंध संभव रहो माता पिता बनने के लिए। हम ये बतलाते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा अपने बच्चों को फूलों फलों और पृथ्वी में भरो जा भी लागू है। ये आज्ञा यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों में बुलावा ये किनारे नहीं गया है। हम बहुत धन्यवाद देते हैं जो बड़े विश्वास को पति और पत्नी ने दिखलाया है कि अपने इच्छा से बच्चों को पैदा करें, कि बच्चे को पैदा किया जाए और कितने बच्चों को होगा कि परमेश्वर और पति पत्नी के बीच एकत निर्णय होगा। ये पवित्रता फैसला होते हैं, फैसले जो सच्चे प्रार्थना से बनाया जाए। सालों पहले 70 के एल्डर जेम्स और मैसन ने मुझे ये कहानी बतलाया। हमारे चौथा बच्चे के पीड़ा पैदा से होना बुलावा अनुभव था। जब मैंने इस सुंदर नई पुत्री को देखा नेसरी में, उसके पैदा होने के बाद मैंने एक आवाज को सुना जिसने प्रकट किया, वह एक और होगा, तुम्हारे और लड़का रहेगा। मुक्तपूर्ण ढंग से मैंने अपनी बात भी थका माना पत्नी के खाट के पास द्वारा और उसके ये खुशी के खबर दिया। वे मेरे लिए गलत समय था। सालों साल मैसन के सातवें बच्चे हुए, 3, 4, 5, 6, 7 साल बीत गए। अंत में 8 साल बाद उनके सातवें बच्चे का पैदा हुआ एक छोटा लड़का। यहाँ पर उनके तस्वीर है 37 सालों के बाद। पिछले अप्रैल में प्रधान थॉमस एस मॉन्सन ने घोषणा दी, जहां एक बार गिरजाघर के स्तर और संगठनों के स्तर के समान था, अब वह बड़े अंतर हो गई है उनके बीच में और ये बढ़ती जा रही है। मानव जाति के उद्धारकर्ता ने अनेक के संसार में विवरण किया मगर संसार के नहीं। अब भी संसार में रहे सही मगर संसार का नहीं। जैसे हम झूठे विचार को अस्वीकार करके और झूठे शिक्षाओं को भी और सही राह परमेश्वर के आज्ञा पर। आज दुनिया में कई बच्चे की होने की जरूरत को कम कर देती है। ये बात में बदलाती है कि परिवार में कम बच्चे हैं। मेरे पुत्री ने मुझे अभी जल्द में वेबसाइट पर एक ऐसा ही पांच बच्चों के साथ के लिखे हुए को पढ़ाने को कहा। उसने टिप्पणी दिया, संस्कृत में ये बहुत मुश्किल है मंत्र पर धर्मशास्त्र के अनुदेश को लाना। बच्चे कॉलेज तक ही नहीं पहुंच पाते, दुनिया भर घूम सकते हैं पर बच्चों कम जरूरी। रात को फुर्सत में घूमना जरूर ज्यादा जरूरी है। अपने शारीरिक के लिए जिम में जाकर कसरत करना ज्यादा जरूरी है। कोई भी काम ये उसके पापने के ऐसा ज्यादा। फिर वो अगले, माँ बनना एक कॉलिंग है, तुम बच्चे नहीं पैदा करते हो। वह स्टेम्स से भी सुंदर है। ये वो नहीं है कि तुम अपने मसरूफ समय में उसके लिए वक्त निकालो। बच्चों होना के परमेश्वर ने तुम्हें समय दिया है। छोटे बच्चे को पालना मुश्किल है, कई दिन मुसीबत होते हैं। एक जवान माँ सात बच्चों के साथ बस में चढ़ी। उस बस के चलने वाले ने पूछा, क्या ये सब तुम्हारे हैं? ये क्या तुम्हारे पिकनिक पे जा रहे हो? वे सब मेरे हैं, उस जवाब दिया, ये पिकनिक नहीं है। जबकि दुनिया के लोग हर समय पूछते रहते हैं, क्या ये सब तुम्हारे हैं? गिरजाघर में परिवारों को पवित्र स्थान को बनाने के लिए, जहां हम माताओं को अंदर और मदद करते हैं जिनके पास बच्चे हैं, एक नए पिता के लिए वहां पर कोई शब्द ही नहीं है जो धन्यवाद और प्यार को सूचित करते हैं अपने पत्नी के उपहार के लिए। एल्डर मेसन को एक और अनुभव हुआ। उसके शादी के कुछ ही हफ्ते बाद उनके मदद किया अपने परिवार के जिम्मेदारी को लिए। उसने कहा, मैरी, मैंने जाना कि मुझे डॉक्टरी के स्कूल जाने के लिए ये जरूरी होगा कि वो काम को करते रहें। पहले हम ये को नहीं करना चाहते थे, बच्चे बाद में पैदा करने थे। जब अपने माता पिता के घर के मैगजीन के देखते हुए मैंने एल्डर स्पेंसर डब्ल्यू इम्पल के एक लेख को देखा जो 12 के अपोजल थे, जिम्मेदारी जो शादी के साथ जुड़ती है। एल्डर किम्बल के अनुसार एक पवित्र जिम्मेदारी थी कि फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ। मैं माता पिता के घर गिरजाघर परेशान के इमारत के पास था। मैं तुरंत दफ्तर चल गया और उसके लीक को पढ़ते के 30 मिनट बाद मैंने अपने आप को एल्डर स्पेंसर डब्ल्यू किम्बल के मेज के दूसरे ओर बैठा हुआ पाया। ये आज उतना आसान नहीं होगा। मैंने उस समय कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था, वहां पर कोई और तरीका नहीं था मगर बच्चे पैदा करने को टालना पड़ा। एल्डर किम्बल शांति से सुना और फिर धीमी आवाज में जवाब दिया, भाई मैसन, क्या प्रभु चाहेगा कि तुम उसका एक आवश्यक आज्ञा को संबंध करना डॉक्टर बनने के लिए? प्रभु के मदद के साथ तुम अपने परिवार को प्राप्त कर सकते हो और डॉक्टर भी बन सकते हो। तुम्हारा विश्वास कहाँ है? एल्डर मैसन आगे बतलाता है, हमारे पहले बच्चे एक साल से पहले ही पैदा होगा। मरी और मैंने बहुत मेहनत किया और प्रभु ने स्वर्ग के खिड़की खोला। मैसन को दो और बच्चे को आशीर्वाद मिला 4 साल बाद डॉक्टर के स्कूल से सफलता होने पर। दुनिया भर में अधिक अधिष्ठा और धन संपत्ति मुश्किल है। अप्रैल के महासम्मेलन में प्रधान थॉमस एस मॉनसन ने कहा, अगर तुम पैसे को लेकर अपने पत्नी और परिवार के विषय में चिंता करते हो, मैं आश्वासन देता हूं कि वहां कोई शर्मिंदा नहीं है जोड़ी को कम खर्चे और बचने में। इन चुनौतियों के समय तुम एक दूसरे के ज्यादा करीब आ जाओगे जब तुम सीखोगे कि किस तरह बलिदान और कठिन फैसले को कैसे किया जाता है। एल्डर केम्बल की अनभौतिक सवाल, कहाँ है तुम्हारा विश्वास? हमें पवित्र धर्मशास्त्र के और मुद्दाओं है। ईडन के पीछा नहीं था एडम और ईव का पहला बच्चा का पैदा हुआ से। जब एडम और ईव ने बगीचे को छोड़ दिया था, एडम और ईव ने धरती पर मेहनत की। एडम और ईव को पुत्र और पुत्रियां हुई और विश्वास में कार्य किया और फूले फले धरती पर फैल गए। ये उनके जेरूसलम के घर में नहीं था, सोने चांदी और अनमोल चीजों के साथ, जो लिहाय और सराया विश्वास में कार्य किया, अपने बेटों जैकब और जैसन को पैदा किया। वे वन में थे, लिहाय अपने पुत्र जैकब के बातें कर रहा था, मेरे कष्ट के समय में तुम पैदा हुए हो। लेह ने जोसेफ से कहा, तुम इस समय पैदा हुए जो अधिक चिंता दिनों में जब तुम्हारे माता गुजर रही थी। एक्सोडस के धर्मशास्त्र में एक शादी शुदा आदमी और औरत विश्वास में कार्य करते हुए एक पुत्र को जन्म दिया। वहां पर आगे दरवाजे पर कोई अंदर आदर नहीं था जन्म को लेकर। वे उसके छिपे हुए फेरो ने आज्ञा दी कि सभी इसराइली के जितने पुत्र उपरण हैं, सभी को नील नदी में डाल होगा। तुम आगे की कहानी को जानते हो। एक छोटे से खास के फेरो की बहन ने उसे पाया और उसकी माँ की उसके आया बन गया। उसके लड़के फेरो की पुत्री को वापस दे दिया, जो उसे अपने बेटे की तरह लगाया और उसे मौजस का नाम दिया। सबसे प्यारे बच्चे के जन्म की कहानी मैंने वहां पर कोई सजा हुआ बच्चे का कमरा एक कीमती सामान नहीं था, दुनिया का उद्धारकर्ता के सिर्फ चरनी। सबसे अच्छे समय में, बुरे समय में, परमेश्वर के सच्चे संतनों विश्वास में कार्य करते हुए कभी नहीं भूले थे निकले, या परमेश्वर का आज्ञा को भूले नहीं, को फूलो फलो और पवित्र में फैल जाओ। हम विश्वास में आगे बढ़ते हैं और ये फैसला करते हुए कि कितने बच्चे और कब उन्हें होना चाहिए है, ये पत्नी और पति और प्रभु के बीच में है। हमें इसको भी इस दौरान कुछ कहना नहीं चाहिए। बच्चे को पैदा करने के नाजुक वास्तव है जो सच्चे महिला के लिए बहुत पैदा से शक्ति, और जिन्हों शादी नहीं किया और परिवार नहीं है। तुम महान महिलाओं के लिए हमारे स्वर्ग पिता तुम्हारे प्रार्थना और इच्छाओं को जानता है। हमें कितने खुश नसीब हैं तुम्हारे आशीर्वाद प्रार्थना के लिए। बच्चों को पैदा करने उस सच्चाई जोड़ियों के लिए दिल टूटने के सम्मान है जो शादी करते हैं। पैदा पता चलता है कि उन्हें बच्चे नहीं हो सकते जो बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। ये जो जोड़ियों के जो बड़ी परिवार चाहते हैं मगर छोटी परिवारों के मिले। हम सभी समय अपने मरणशील की मुसीबत को समझ नहीं सकते। कभी जिंदगी बहुत गलत होती है, खासकर जब हम सबसे बड़ी इच्छा होती है वो करने जो प्रभु ने आज्ञा दे। प्रभु के चेले के तरह मैं तुम्हें कहता हूँ कि ये वादा पूरा होगा। विश्वासियों सदस्य जिनके कार्य उन्हें आनंद शादी शुदा के आशीर्वादों और माता पिता बनने का मौका नहीं देती है जिंदगी में, वे स्वर्ग जीवन में सभी आशीर्वादों को प्राप्त करेंगे अगर वे अपने वादों को पूरा करेंगे जो उन्हें परमेश्वर के साथ बनाया है। पेरोलिमो वेस्ट मिशन के प्रधान जय स्कॉट डोरिस ने मुझे अपने पति और बारे में कहा। उसने कहा, 25 साल पहले बेकी और मैं शादी शुदा था और हमें कुछ बच्चे नहीं हुए। हम जगह जगह पर गए, काफी वोट में गए और अपने आप को बताया। वोट के सबसे सोचते कि हमें क्यों बच्चे नहीं होते। वो भी सोच में थे कि भाई और बहन डोरिस की तरह। जब मैं बिशप की तरह नियुक्त हुआ, वोट के सदस्य की मेरे पास बच्चे और जवानों का कोई अनुभव नहीं है, मैंने उनके बहाने रहे थे मत की धन्यवाद दिया और उनसे गुजारिश की बच्चों को पढ़ने की कार्य को अनुभव के लिए उनके बच्चों को इस्तेमाल करें। उन्होंने प्रशंसित से मुझसे इजाजत दिया। हम इंतजार किया, अनुसार को पाया और धीरे से सीखा। 25 सालों के शादी के बाद एक बच्चे हमारे जिंदगी में आया। हमने 2 साल के निकोल को गोद में लिया और फिर नौजवान शिक्षा निकोल आए। अजनबी आज हमारी सुंदर बच्चे को देखकर तारीफ कर सकते हैं। वे हमारे बच्चे हैं। हमें अपनी पुरानी जिंदगी जी है। भाइयों बहनों, हमको किसी को भी जो पवित्र नीची जिम्मेदारी में जांच नहीं करना चाहिए और बच्चे को लिए। प्रभु यीशु ने एक बच्चे को लिया और अपने हाथों में लिया। जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में किसी को एक भी ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है, ग्रहण मुझे करता है जिसने मुझे भेजा। हमें विम्रता और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के आज्ञा को स्वीकार और ढूंढ कर समझना चाहिए। उसके पवित्रता आत्मा को शांति से सुनना चाहिए। परमेश्वर के आनंद योजना में परिवार मुख्य है। मैं बच्चों के महान आशीर्वाद को करता हूं और जो खुशहाली वो हमारे लिए जीवन और आनंद जीवन में लाते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
The 8th chapter of Preach My Gospel.
Preach My Gospel के 8वें अध्याय में समय को होशियार से इस्तेमाल करना है। Elder M. Russell Ballard हमें याद दिलाया है कि हमें लक्ष्य जरूर स्थापित करने चाहिए है और सीख लेना चाहिए कि कैसे तरीके को साहस से करके संपाद करना। मैं प्रधान मानसून के उदाहरण के लिए आभारी हूँ। परमेश्वर की भविष्यवक्ता की तरह जो वो सब करता है, वो सुनिश्चित करता है जैसे उधारकर्ता ने किया है कि अभी वो उपयुक्त समय है बीमारी को दर्शन करे, उन्नति करना जिसका पास कम आत्मा की हिम्मत है और सभी का नौकर बनना। मैं बहुत उन सब के उदाहरण के लिए भी आभारी हूँ जिन्होंने अपना समय में अपने साथी की सेवा करता है। मैं बयान करता हूँ कि अपने समय में दूसरों की सेवा करने के परमेश्वर प्रसन्न होता है और उसके कार्य हमें उनकी करीब और ले जाएंगे। हमारे उधारकर्ता अपने
समय कभी भी नहीं जाती। कितनी भी तुम कोशिश करो, समय एक माँ है जो कभी भी किसी दुकान पर भी नहीं बैठ सकती किसी भी कीमत में। फिर भी अगर उससे अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए उसका मूल बहुत महान है। किसी भी दिन हम सभी को बिना पैसे के एक ही चंद और घंटे मिलते हैं इस्तेमाल करने को, और फिर हम जल्द ही सीखते हैं जिस तरह वो साधारण गीत सावधानी से सिखलते हैं। समय का पंछी उड़ता है जाए, हम उससे वापस नहीं ला सकते। हम सब परमेश्वर पर निर्भर है समय को क्षमता से फायदे पर इस्तेमाल करने से, और वह हम पर उसकी हिसाब मांगेंगे। हमारे साथ जो आवश्यकता की गई है, हमें अपने
इच्छाओं को काम करना सीखना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य या बेकार के कार्य में समय को इस्तेमाल करने के खतरे से बचें। हमें अच्छी तरह से सिखलाया गया है स्वामी शिक्षक से जो प्राथमिकता है जो उन्होंने पढ़ा पहाड़ पर प्रवचन में अपनी घोषित किया। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्ताव भी तुम्हें मिलेंगे। परमेश्वर से मिलता है और तैयार करने के लिए होता है। अल्मा ने प्राथमिक की बातें की जब उन्होंने शिक्षण की कैसे अच्छे इस्तेमाल करते हैं अनमोल उपहार के समय को जो परमेश्वर को मिलने की तैयारी में कुछ मदद मार्गदर्शन की जरूरत हो सकती है। मगर हम जरूर प्रभु को और अपने परिवार को सबसे सच्चे में रखेंगे। प्रेसिडेंट उग्दोफ ने हमें याद दिलाया कि परिवार के नाता में प्यार को सही में समय की तरह बतलाएं। मैं बयान करता हूं कि जब मदद प्रार्थना और ईमानदारी से किया जाए सकता है हमारे स्वर्ग पिता हमको मदद करेंगे उस पर प्रभाव लाने की जहां हमारे समय की ज्यादा जरूरत है। समय को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करना बेकारी से जुड़ा हुआ जाती है। जब हम आज्ञा का पालन करते हैं आलस का अंत होता है। हमको जरूर जानना है कि जब हम व्यस्त हैं तब हम लाभकारी है। उदाहरण में यह निराला है कि तुरंत संदेश को किया जाए उसे जो हमारे पास उपलब्ध है। मगर हमें यह याद करना चाहिए कि हमें उसकी आदत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने देखा है कि कुछ कोई इस नए समय को इस्तेमाल करवाले चीजों की लत पड़ गई है। एक जो हमें आदत में डाल देती है और सम्मिलित सभा संदेश को हर समय जांच और भेजने में झूठे एहसास को देना के वैश्विक लाभकारी है। वहां पर कई लाभ है जो हमारे आसानी से संदेश और सूचना को प्रवेश करने के लिए। मैंने देखा कि लेख को ढूंढना सम्मेलन भाषों बाप दादा का लेख पत्र और ईमेल्स फेसबुक जानकारियों ट्विटर जानकारियों और टेक्स्ट को प्राप्त करने में मदद करती है। कितने भी अच्छे ये चीज़ें हैं हम इसे उन चीज़ों की स्थान नहीं देने जो सबसे ज़रूरी है। वो कितना बुरी होगा अगर हम फोन और कंप्यूटर की सारी बनावट से प्यार स्वर्ग के पिता के साधारण सच्चे प्रार्थना का स्थान के लिए लाए जाए। हमें उत्सुक से प्रार्थना करना चाहिए जैसे हम टेक्स्ट पर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक खेल और ऑनलाइन नेत्रदानी वो देर तक साथ चलने वाली सच्चे मित्र नहीं जो बंधे वाले साथ जो दे जो हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं और हमारे महान बदहंति को ढूंढ सके। मैं कितना आभारी हूँ कोरम को कक्षा और सहायक संस्था के संदेश के देखकर जो एक दूसरे के लिए सहायता करते हैं। कुछ समय में मैंने और अच्छी तरह से देवपोत को समझा है जब उसने कहा इसलिए तुम अब विदेशी और मुसफिर नहीं हैं परंतु पवित्र लोगों के सच्ची स्वदेशी और परमेश्वर के घरंत को हो गए। मैं जानता हूं कि हमारे महान खुशहाली आती है जब प्रभु के राय लेते हैं और वे चीज़ों जो आनंद इनाम देती हैं बल्कि नहीं कि ऑनलाइन फेसबुक पर बेकार के घंटों को गुजारे और वीडियो खेलें। मैं तुमसे गुजारिश करता हूं कि उन चीज़ों को छोड़ दो जो ज़रूरी समय को बर्बाद करता है और उनके मालिक बनते हैं। ना तो उन्हें मौका दे कि वे तुम्हें उनके लिए मजबूर करें और हमारे मालिक बन जाएं। शांति के लिए उद्धारकर्ता बतलाता है हमें उन चीजों में समय को बिताना चाहिए जो सबसे जरूरी है, और परमेश्वर का कार्य सबसे जरूरी है। जब हम परमेश्वर से विश्वास से प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार को हर दिन पढ़ते हैं और सीखते हैं, सोचते हैं जो कुछ हमने पढ़ा और महसूस किया है, और फिर उसे करके जो सीखा है, हम उसके करीब जाते हैं। परमेश्वर का वादा वो है जब हम सही धर्म शास्त्र में से सच्चाई से ढूंढते हैं, वो हमें बुद्धि देगा अपने पवित्र आत्मा द्वारा। शैतान हमें लालच देगा हमारे समय को गलत इस्तेमाल करने के लिए छुपे से बहकावे द्वारा। भले लालच आती रहे, एल्डर कोल्टनर क्विक ने सिखलाया कि जो संतों द्वारा उद्धारकर्ता के संदेश को सुनेंगे वे भूला भक्ता और बहकावे वाले चीजों से नहीं होगा। हारम पेज मार्मन धर्म शास्त्र के 8 में से एक गवाही देने वाला ने में है हमें एक बहकावे के विषय में जरूरी बतलाया। उसके पास एक तरह की पत्थर था और उसमें देखने से लिखा जो वो सोचता था कि गिरजाघर का प्रकट होने के लिए है। सही कारण करने के बाद एक लेख कहता है कि पत्थर को ले जाकर धरती पर पटक कर तोड़ दिया गया जो वह दोबारा बहका ना दे। मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि उससे जानने को जरूरी जिंदगी के समय को बर्बाद करता है जिससे जरूरी नहीं है निकालना। हमें अपने चुनाव में होशियार रहना जरूरी है ताकि जाने कि समय को हम जिस तरह इस्तेमाल करते हैं वही सही है। प्रभु परिवार कार्य और पूरे तरह से बनाने वाले कार्य के साथ, जबकि कई उन्हें जान चुके हैं, वहाँ पर जिंदगी में भरती हुई खुशी है जब हम अपने समय को वह ढूंढने में लगते हैं जो विश्वासकारी साथी पवित्रता दूसरों के लिए अच्छा कार्य जवान बताना। समय बहुत जल्द गुजरता है। आज अच्छा दिन होगा जबकि हमारे मरणशीला की जिंदगी का समय गुजर जाता है। समीक्षा करते हैं कि हम परमेश्वर को मिलने से हम क्या तैयार होगा है। मैं बयान देता हूं कि वहां महान इनाम है जो मरणशीलता में समय लाते हैं, अमरशील और आनंद जीवन के लिए तैयार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
प्राथमिक गायक मंडली और सभा आप गाएगी Praise to the Man। गायने की समाप्ति पर एल्डर्स कार्ल बी कुक और लेग्रान आर कर्टिस जूनियर जो 70 के हैं हमसे बातें करेंगे। उनके भाषण के बाद हम एल्डर डी डॉट क्रिस्टाफसन जो 12 देवतों को परिषद के हैं उनसे सुनेंगे।
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
मेरे महाअध्यक्ष तक होने के पहले सप्ते एक थकावट के बनने भरे दिन के अंत में मेरे बैग बहुत भर चुका था और मेरे मन में सवाल उभर रहा था, किस तरह मैं ये कर सकता हूँ। मैंने सत्तर के दफ्तर से निकले और गिरजाघर प्रशासन निर्माण के लिफ्ट में दाखिल हुआ। जैसे ही लिफ्ट चला, मेरे सिर नीचे था और मैं प्रोफेसर को भविष्य में तरह से देखने लगा। दरवाजा खुली और अंदर आया, मगर मैंने ऊपर देखा। तुम नीचे क्या देख रहे हो? मैंने उस आवाज को जाना, वो प्रधान मॉनसून था। मैंने तुरंत ही ऊपर देखा और कहा, कुछ भी नहीं। मैं जानता था कि वो तुरंत जवाब ने मेरे चमता को बहुत प्रेरित किया, मगर उसने मेरे चेहरे पर चुपकी को देखा था और मेरे वाहनदार बैग को। उसने मुस्कुरा लिया और प्यार से कहा, स्वर की ओर इशारा करते हुए, यह बेहतर है कि ऊपर देखें। जब हम एक और मंजिल नीचे जा रहे थे, उसने मुझे खुशी से बतलाया कि वो मंदिर जा रहा था। जब उसने मुझसे अलविदा कहते हुए मुझे देखा, ऐसा लगा कि वो मुझसे फिर कहना चाहता था, यह बेहतर है कि आप ऊपर देखें। जब हम जाने लगे, हमारे मन में ये धर्मशास्त्र की शब्द आई, परमेश्वर पर विश्वास करो कि वो है, विश्वास करो कि उसके पास सारी ज्ञान है और सारी शक्ति स्वर्ग और पवित्र दोनों पर। जब मैंने स्वर्ग के पिता और यीशु मसीह के शक्ति के बारे में याद लिया, मेरे दिल में चाहे मिल उस फर्श को आने देखे, तब से मैं इस अनुभव और भविष्यवक्ताओं के कार्य का विचार किया। मैं सोच में था और मेरे सिर झुक गया जब भविष्यवक्ता बातें किया और मैं उनको देखा। उसने मुझे दोबारा परमेश्वर को दिखलाया, जहां मैं मसीह के बलिदान के कारण चंगा और मजबूत हुआ। यह हमारे लिए भविष्यवक्ताएं करते हैं। मैं गवाही देता हूं कि प्रधान मानसून सिर्फ एक भविष्यवक्ता देवदूत और आकाशवाणी देने वाले नहीं, वो एक लाजवाब उदाहरण है ऊपर देखने के मूल को जीने में। सारे लोगों से वो अपने जिम्मेदारियों के कारण से नीचे महसूस कर सकता है, बदल में वो महान विश्वास के अनुशासन करते हैं और आशीर्वाद। वो प्रभु पर विश्वास है और शक्ति के लिए ऊपर उन पर निर्भर है और प्रभु उनके आशीर्वाद करेगा। अनुभव ने मुझे सिखलाया कि अगर हम विश्वास करते हैं और परमेश्वर को मदद के लिए पुकारते हैं, प्रधान मंशन की तरह हम जिंदगी के कठिनाइयों से दबेंगे नहीं, हमें शक्ति मिलेंगे और हमारे जिंदगी शांति और खुशी से भर जाएंगी और ये जानेंगे कि हम जिसके बारे में चिंता कर रहे थे उसका कोई आनंद महत्व नहीं है, मगर हमारे पास वापस विश्वास होना चाहिए। ये क्यों हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने जिंदगियों में हमेशा देखें? शायद हमारे पास विश्वास कम है। वो साधारण कार्य हमारे मुसीबतों का हाल है। उदाहरण के तौर जब इज़राइल को बच्चों के जहरीले सांपों ने काटा था, मोसेस को आज्ञा मिली कि वो एक पीतल के सांप को कंबे से लटकाए। वो पीतल का सांप मसीह को पेश कर रहा था, पर कई ऊपर देखने में असफल थे और वे नष्ट हो गई। आलमा सहमत किया कि इस कारण से कि इज़राइलाइट ने ऊपर सांप के ओर नहीं देखा, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते थे। मेरे भाइयों, अगर केवल नहीं उठाकर देखने से ही तुम्हारे सब दुख को हो जाते हैं, तब तुम क्या शीघ्रता के साथ नहीं देखते? यह अविश्वास में अपने हृदय को कठोर बना लेते हैं। अगर ऐसा है तब संताप पड़े तुम पर,
and that he shall rise again from the dead.
प्रभु को प्रथम मानसून की ऊपर देखने की प्रोत्साहन मसीह को याद करने के लिए है। जब हम उनकी याद करते हैं और उनकी शक्ति में विश्वास करते हैं, हम उसकी प्रश्चित के शक्ति पाते हैं। इसका अर्थ है कि हम दुख, हमारे मुसीबतों, तकलीफों और हमारे परेशानियों से दूर हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि हमें अपने पापों से क्षमा मिल सकते हैं। अभी जल्दी में और बहन कुक ने दक्षिण अफ्रीका के महिलाओं के सभा में भाग लिया। अपने जीवन में कुछ लोगों प्रेसिडेंट प्रस्तुत करने के प्रेरित संदेशों को सुनकर शिक्षा की सहायक संस्था के प्रधान ने हम सबको बाहर बुलाया। उन्होंने हमें बलून को दिया गया। उन्होंने समझाया कि हमारे बलून यह देख रहा था कि वो मुसीबतों, कठिनाइयों या दुख को हमारी जिंदगी में भरी है। तीन का गिनने पर हम बलूनों को छोड़ दिया। जब हम ऊपर अपने मुसीबतों को उड़ते हुए देखा, वो पर आवाज आई, हाँ, गैस बलूनों को छोड़ने की तरह नहीं, धार्मिक रूप से ऊपर देखना है एक ही समय का अनुभव नहीं है। हम प्रभु जो से सीखते हैं कि उसे हमेशा याद किया जाए और उसके आज्ञा का पालन करें, ताकि हमारे साथ उसकी आत्मा। और जब इसराइल के बच्चे निर्जन प्रदेश में घुमादार थे, प्रभु ने उन्हें दिन को मार्ग दिखलाने के लिए मेघ के खंभे पर और रात को उजाला देने के लिए आगे को खंभे में होकर उनके आगे आगे चल करता था। तो वो आज हमें कैसे अगुवाई करेंगे? भविष्यवक्ता, देवदूतों और पुरोहितों के नियुक्तों द्वारा, और जो महसूस कम करते हैं, स्वर्ग के पिता से अपने प्रार्थना को गंभीरता से चाहते थे। वो हमें राह दिखलाता है जब हम दुनिया की चीजों को छोड़ देते हैं। वो हमें राह दिखलाता है कि जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। जिंदगी के सफर में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए और पवित्र आत्मा के संग हमेशा सुनने के लिए कान और देखने के लिए आंखें दोनों ऊपर की ओर, हमें जरूर उस मार्गदर्शन पर चलना चाहिए। हमें ऊपर देखना चाहिए और करना चाहिए। हम स्वर्ग पिता के बच्चे हैं। वो हमारी जिंदगी का भाग बनना चाहता है। वो हमारी घावों को भरेगा, आंसू को पोंछेगा और हमारी मदद करेगा उसके पास उपास कर जाने के लिए। प्रभु मेरी ज्योति है, फिर क्यों मैं फिक्र करूं? दिन में और रात में वो है, वो मेरी खुशी और गीत है। दिन में और रात में राह दिखलाता है मुझको। मैं गवाही देता हूं कि हमारे पापों से क्षमा मिलती है और हमारे मुसीबतों का होती है जब हम मसीह को देखते हैं। उनकी याद रखो और अपने सिर को नीचे मत करो। जैसे प्रधान मंशो ने कहा है कि यह बेहतर है कि ऊपर देखें। मैं बयान देता हूं कि यीशु ही हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
There are various names.
कई नाम इस्तेमाल किया जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। ये नाम हमें प्रभु के मिशन के अभिषेक करने के लिए दूसरे ही दिखलाता है। ये उद्धार के तैयार उद्धार करता। हम सब जानते हैं कि बच्चे का क्या मतलब है, क्योंकि हम सब किसी चीज को किसी समय बचाए गए थे। बच्चे में मैं और मेरी बहन एक छोटे से नाव में नदी पर खेलते रहे, और जब हमने खेल को सुरक्षित स्थान को बचाया, हमारे रोने सुनकर हमारे पिता हमें बचाने आए। नदी के खतरे से बचते हैं जब हम बच्चों को याद करते हैं। हम अनुभव ये करते हैं। वे नाम मुक्तिदाता उसकी तरह के नजर प्रदान करता है। मुक्त होना का मतलब है ये कानूनी कार्य की तरह है। जायदाद मुक्त होती है गिरवी या कर्जी को पूरी तरह से निकलना। एक जाने माने धर्मशास्त्र में इस्तेमाल किया गया है, मुक्त का इसराइल का बच्चों का इजिप्ट में खेत से बाहर निकलना, क्योंकि प्रभु तुमसे प्यार करता है, तुमको बलवंत हाथ से द्वारा और बर्तिकार के घर में फेरो इजिप्ट का राजा के हाथ से मुक्ति दिखलाया है। ये विषय यहोवा का इसराइल से लोगों के खेत से मुक्त करने का बारे में धर्मशास्त्र में है, मगर ये भी क्या कहा गया है उनके सिखाने के लिए कि वहाँ पर एक और ज्यादा जरूरी इसराइल के पाप से मुक्ति मिलेगा। लहिया ने सिखला है मसीह अपने उचित समय में आ गया, जिससे वे मानव वर्णुष के बातों के ऊपर उठाएगा। साम ने लिखा, परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधलोक के वंश से मुक्त करेगा। प्रभु ने यशायाह के द्वारा बताया, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा से समय और बदल के समान तेरे पाप मेरे पास लौट आया है, क्योंकि मैंने तुझे मुक्त किया है। इन तीन धर्मशास्त्रों में पाप से मुक्ति पर जो बतलाया गया है वास्तव में यीशु मसीह का प्रायश्चित है। मसीह में हमें मुक्ति उसके लहू के मिलती है, अर्थात अपराधों के क्षमा उसके अनुराग से बरंती के अनुसार मिला। प्रधान जॉन टेलर ने सिखलाया कि मुक्तिदाता के बलिदान के कारण कर्ज के चुका दिया गया है, मुक्ति मिल चुकी है, वादा पूरे हो चुके हैं, सच्चाई पूरी हो चुकी है, परमेश्वर के इच्छा के पूरी चुकी है और सारी शक्ति परमेश्वर के पुत्र को हाथों में दे दिया गया है। इस मुक्ति का प्रभाव परमेश्वर के सभी बच्चों को शारीरिक मौत से विजय देगा, वे है शारीरिक मुक्ति और छोटे मिलेगा और सभी पूर्ण जीवन को पाएगा। मसीह के द्वारा इस मुक्ति पर विजय को दूसरा रूप से आत्मिक मौत, उस बलिदान और मौत से मसीह ने सारी मानव वंश के पाप को चुकाया, ताकि हम एक को पश्चाताप मिले। इस प्रकार अगर हम पश्चाताप करेंगे, हम अपने पापों के मुक्ति हो सकते हैं। हमारे उद्धारकर्ता ने की इस कीमत को भरा है, ये हम सब के लिए अच्छाई खबर है। इसके लिए सभी पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रक्त है जो धर्मशास्त्र, मगर जिन्होंने बहुत मेहनत किया है अच्छी जिंदगी को गुजारी के लिए, उन्हें भी पाप से मुक्ति के बहुत जरूरत है। कोई भी पिता के पास बिना मसीह के मदद से नहीं पहुंच सकता। इस प्रकार ये प्यारे पाप से मुक्ति को नया दी जा सकती है। कितना महान, कितना महिमा, कितना पूरा, कितना मुक्ति का तरीका, जहां नया प्यार और दया दिया साथ में मेल होता है। प्रधान बोइट कैपेका ने सिखलाया है, एक मुक्तिदाता है, एक महेश्त है, जो दोनों नायक को पूरा करना राजी और योग रहता है और उन पर दया करते हैं जो पश्चाताप करते हैं। धर्मशास्त्र रचना और जिंदगी के अनुभव मुक्ति के कहानियों से भरे पड़े हैं। मसीह के द्वारा लोग अपने जिंदगियों के बदल सकते हैं, बदलाते हैं और मुक्ति पा सकते हैं। मैं इन मुक्ति के कहानियों को पसंद करता हूं। मेरे पास एक मित्र है जिसने अपने युवा अवस्था में गिरजाघर के आंगनों का पालन नहीं किया था। जब वो जवान हुआ, उसने जाना कि सुसमाचार को नहीं जीने से उसके क्या खुश खो दिया है। उसने पश्चाताप किया, अपने जिंदगी को बदला और अपने आप को सच्चाई के जीवन में संपत्ति की। एक दिन हमारे अवस्थाप में मिला और कई सालों बाद में मंदिर में मिला। सुसमाचार को पूरी तरह से निभाया, किसी तरह से। उसने कहानी मुक्ति का है। उस पश्चात के द्वारा मैंने उसे पूछा कि क्या वो समझ गई है कि वो पाप फिर नहीं दोहराना है। उसने आंखों आवाज में बदलाव के बहुत उसने कहा, प्रधान, मैं वो पाप दोबारा नहीं करूंगा। वही कारण जो मैं बपतिस्मा से लेना चाहती हूं, ताकि उस भयंकर पाप से मुझे छुटकारा मिले। कुछ सालों भर जब मैं स्टेक सम्मेलन के दूसरे शव में गया था, मुझे प्रेसिडेंट मॉनसन को गिरजाघर के काम शुरू कर दिया। एक स्टेक सम्मेलन में मैंने एक कार्य सर्क में बताया, उसे बदलाया कि उसकी जरूरत है और उसके वार्ड में सेवा के लिए। इस कहानी में का आदमी के सिर्फ एक नियुक्ति को स्वीकार नहीं किया बल्कि अपने जिंदगी और आधार को अपने बदला और गिरजाघर में पूरी गतिथि में वापस आया। एक मेरे मित्र और उसका धर्म सभा में थी जहां मैंने उस कहानी को बतलाया था। उसके चेहरा ही बदल गया जब कहानी बदलाई चढ़ती थी। उसने मुझे बताया कि उसी तरह से बिशप का बहन और गिरजाघर के सेवा को निमंत्रण का परिणाम था। उसके पत्नी और पिता को अपने जिंदगी को अपने गवाही को बताया। एक सभा में कुछ दिन बाद मैंने दोनों कहानियों को बताया। दूसरे दिन मैंने एक और ईमेल को प्राप्त किया जो इस तरह का था। वह मेरा पिता का कहानी था। उस ईमेल एक स्टेक प्रधान से थी ने बताया कि उसके पिता को ही तरह गिरजाघर की सेवा में अमृत किया गया था जबकि वो सरकारी भी नहीं था और उसके कुछ चालन थे जिसमें बदलाव करना था। उसने निमंत्रण को स्वीकार किया था और उसके तरीका में पश्चाताप किया। कुछ हफ्ते बाद मैंने तीनों कहानियों को स्टेक सम्मेलन में बताया। सभा के बाद एक आदमी ने पास आया और कहा कि वो मेरे पिता का कहानी नहीं था, वो उसका कहानी था। उसने मुझे वो घटनाओं बतलाया कि जिसने उसने पश्चाताप की और मुद्दा और गिरजाघर में वापस पूरी तरह से सम्मिलन किया था। और फिर वो बोलता था जब मैं काम सरकारी सदस्य को था, पहले हम मुक्तिदाता को लौटा नहीं सकते जो उसके हमारे लिए दिया है। मुक्ति की योजना हमारे सबसे बेहतर कोशिश चाहता है पूरी तरह से पश्चाताप और परमेश्वर की इच्छा को करने के लिए। ओशन एफ विटनी ने कहा, उद्धारकर्ता मेरे आत्मा को मुक्तिदाता जिसने महान हाथ में मुझे बनाया, जिसके निर्मल शक्ति के मुझे बड़ा किया और मुझे काडवे पहले ही मृत से बहरा। कौन मेरे दुनियावाद को बदलाता है? इज़राइल के ओ महान परमेश्वर, मैं तुम्हें कहीं नहीं लौटा सकता प्रभु, मगर मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ। आपके पवित्र शब्द क्या मेरे एक ही खुशी नहीं? मेरी दिन की खुशी, मेरे रात के सपने, मेरे होठों को प्रभु के सच्चाई शब्दों के और मेरी सारी जिंदगी उसके आज्ञा पर पालन करना। मैं मसीह के प्रश्चित कर्ता की शक्ति गवाही देता हूँ। जब हम पश्चाताप करते हैं और उसके पास जाते हैं, हम आनंद जीवन के सारे आशीर्वादों को पा सकते हैं कि वो हमें करे अपने खुद के पाप से मुक्त होने के कहानी के साथ। ये मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
The Book of Mormon.
मोर्मन की धर्मशास्त्र में नेहर का के आदमी था कहानी है। यह आसान है समझना क्यों मोर्मन ने 1000 साल के निफाइट के लेखे को संस्कृत किया। सोचा कि यह जरूरी है कि आदमी के इस आदमी के और अंत तक के सिद्धांत के प्रभाव के साथ लिखें। मोर्मन ढूंढ रहा था कि हमें चेतावनी दें जानते हुए कि ये बातें हमारे दिनों में वापस सिखला जाएगा। नेहर पहला बतलाया हुआ था मसीह के जन्म से लगभग 90 सालों से पहले। उसने प्रभु ने सभी मनुष्यों को रचा दी है। लगभग 15 साल पहले कोरियो निफाइट के पास नेहो के सिद्धांत को सिखलाने और फैलाने आया। मार्मन धर्मशास्त्र अभिलेख करता है कि वह मसीह का विरोध था क्योंकि मसीह के विषय में विश्वक्ताओं ने जो बातें कही थी उनके विरोध वो लोगों को विचार करने गए मसीह के आने के विषय में। कोरियो का शिक्षण का परिणाम के लिए मनुष्य के पापों के लिए कोई प्रश्चित नहीं है और जो इस जीवन में ऐसा चाहता है और इस जीवन में जो जैसा चाहता है वैसा ही करता है। इस कारण हर एक मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार उन्नति करता है। इस नकली भविष्यवक्ताओं अपने पापों पर पश्चाताप पर विश्वास नहीं करते हैं। नेहोर और कोरियोर के दिनों में हम उस समय में रहते हैं यीशु मसीह के आने से बहुत पहले नहीं। हमारे स्थिति में उसके दोबारा आने की तैयारी के समय में और उसी तरह पश्चाताप का संदेश हमेशा स्वीकार नहीं होता। दूसरे आज मानते हैं कि प्रिय परमेश्वर सारे पापों को माफ कर देता है साधारण पश्चाताप से, और अगर वही पापों को लिए दंड है, जब परमेश्वर हमें थोड़ा सा दंड देगा और फिर हम परमेश्वर के राज में बचा लिया जाएगा। दूसरे को रिहोर के साथ मसीह के उन्हें उनके उन होने को इनकार करो और इनकार करो कि पाप होता है। उनके सिद्धांत हैं आदर्श मूल और सच्चाई भी साथ साथ है। इस प्रकार जो कुछ एक महसूस करता है वह इस लिखे सच्चाई है, वो दूसरों से तुलने नहीं किया जा सकता है, वह गलत हो या पापों से बुराई है। इस प्रकार वे भविष्यवक्ता सच्चे लगे क्योंकि वो हमें कुछ भी करने के आज्ञा देता है और भूख को सावधान करने के लिए ये परिणाम को जाने बगैर चाहत। नेहो कोरियो के सिद्धांत को इस्तेमाल करके हम कुछ भी कम ये ज्यादा कर सकते हैं। जब भविष्यता पश्चाताप के विषय में बतलाता है, जो पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं थे उन्हें मुसीबत में कर देता है, मगर सच्चाई में भविष्यवक्ता की आदेश को खुशहाली से प्रचलित करना है। बिना पश्चाताप व उन्नति ये जीवन में कोई साधारण भी नहीं है। पाप करना हमें मदद नहीं करेगा आगे बढ़ने में, ये सोचते हुए कि कोई पाप नहीं है या मतलब नहीं है कि पाप की मुसीबतें और पीड़ा कम हो गई है। पाप को झेलना या मतलब नहीं है कि वह खुद ही अपने आप बदल जाए अच्छाई में। पश्चाताप अकेले ही चीजों को बदल नहीं सकती, सिर्फ पश्चाताप ही अच्छे जीवन की ओर मोड़ सकता है। और बिल्कुल यीशु मसीह और मुक्ति को पाने के लिए सिर्फ एक पश्चाताप ही सुंदर पश्चाताप प्रायश्चित को पा सकते हैं। पश्चाताप एक पवित्र उपहार है और वहाँ हमारे चेहरे पर खुशी होनी चाहिए जबकि हम उस पर बताए करते हैं। वो हमको आजादी, भरोसा और शांति पर लाते हैं। पश्चाताप का उपहार सच्चे खुशी को देता है, वह नहीं जो खुशी को बांध कर सकते दुख को बतलाता है। पश्चाताप हो सकता है सिर्फ यीशु मसीह के प्रायश्चित करने से, या उसका बलिदान है जो मनुष्य में पश्चाताप के लिए विश्वास कर सके ला सके। पश्चाताप एक ही जरूरी कार्य है और मसीह की सुंदरता उसकी शक्ति है जिसके दयालु से इंसाफ की प्रार्थना से हमको पूरा करेगा। हम जानते हैं कि पहला पश्चाताप का निमंत्रण से प्यार को दिखलाता है। जब उद्धारकर्ता प्रचार शुरू किया और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आए, वह प्यार का संदेश था। उन सबको आमंत्रित करते हुए जो उन पर शामिल होगा वो आनंद जीवन की बातें को दुनिया में पाएगा। इसके साथ कभी ना खत्म होने वाली खुशहाली रहेगी। एक माता पिता जो अपने बच्चे को पाप करने में का मौका देता है, एक दोस्त को पाप के खिलाफ कुछ नहीं बोलता है, गिरजाघर का एक दूरा हुआ नेता सच्चाई में खुद पर ज्यादा ध्यान देता है, उनसे जिन्हें वह मदद करता कर सकता है कल्याण और खुशियाली में। हाँ, पश्चाताप का चुनौती कुछ बार अकेला या दुखड़ाई कर देती है और ना पसंद किया जाएगा, मगर आत्मा के मदद से या परवाह का मुख्य कार्य का सच्चाई है। दूसरे पश्चाताप का मतलब बदलाव में कोशिश लाना। शायद हमें प्रार्थना करना चाहिए कार्य करने से समय और अवसर के लिए कि हम पाप से बचने के लिए कोशिश करने चाहिए। प्रभु जरूर है, उसे आशीर्वाद देता है जो लायक से विचार करता है। सच्चाई पश्चाताप में सच्चाई बदलाव से कोशिश होते हालांकि वहां पर कुछ साफ और पवित्र है जो कोशिश में है।
दिव्य क्षमा और उन आत्माओं को ठीक मिलती है जब प्रकृति से निश्चित ही गुण प्यार से गुण को बदलता है, रोशनी की ओर बदलती है। पश्चाताप के साथ हम दिव्य नियम की क्षमता को धीरे से सुधार सकते हैं कि जानते हैं कि एक मनुष्य को जो दिव्य राज्य के नियम को निभा नहीं सकते वह दिव्य महिमा में रहा नहीं सकता। तीसरा, पश्चाताप का मतलब सिर्फ पापियों को छोड़ना नहीं है मगर आगे कार्य बने रहना है। द बाइबल डिक्शनरी बतलाता है पश्चाताप का मतलब है एक का दिल और इच्छा को परमेश्वर की ओर मोड़ना। मोमेंट की धर्मशास्त्र के कई में से एक उदाहरण एल्मा के शब्दों में पाया जा सकता है। उन्होंने कहा, इस कारण मेरे बेटे मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि परमेश्वर के भय के कारण तुम अपने पापों से हट खींच लो और अपनी पूरी बुद्धि बल और योग्यता के साथ प्रभु की ओर घूमो। हमारे प्रधान प्रभु पर पूरी तरह से होना चाहिए। वह पश्चाताप को पूरा करने के लिए उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए अभी और आगे जिंदगी में वादा करने के लिए। हम हमेशा इस वादे को जो बपतिस्मा के समय लेते हैं कि वादे की तरह जब से यह बयान हुआ है, उद्धारकर्ता की खुद की बपतिस्मा हमें वह उदाहरण देती है। उसने अपने आज्ञाओं के वादों को पिता से पक्का किया लेकिन पवित्र होने पर भी उसने इस विधि का विरोध ना करते मानव समझा के लिए यह उदाहरण प्रस्तुत किया। इस वादे के बिना पश्चाताप पूरी नहीं हो सकती है, पाप से छुटकारा नहीं मिल सकती। चौथा, पश्चाताप चाहता है कि गंभीरता से करने और उससे करने की कोशिश करें पाप से बचने के लिए पीड़ा के समय। अभी पश्चाताप के विषय के तरीकों के सच्ची बनता है शायद किसी की मदद के लिए, मगर यह एक ना सोचने वाली पश्चाताप का तरीका होता है जिसमें कुछ ही तरीके होते हैं करने को सच्चे महसूस या बदलाव के साथ नहीं। सच्चा पश्चाताप स्पष्ट नहीं है, प्रभु को मुख्य जरूरत है देता है। हम शायद जान सकते हैं कि क्या एक आदमी ने पश्चाताप किया है जब वह मानता है और छोड़ देता है। स्वीकार करना और त्याग करना शक्तिशाली कार्य है, वो अभी कठिन है संयोग से कहने में। मैंने किया है, मुझे माफ कर दो, ये गहरा है। कभी कभी धन्यवाद का दोष दुखियाई होती है और परमेश्वर और मनुष्य को दोष देती है। दर्द और शोक और बहुत आंसू दयालु मुक्तिदाता में विश्वास और उनकी शक्ति है निराशा आशा में बदलती है। एक मनुष्य का सच्ची प्रकृति और चाहता है बदलती है और जब एक बार पाप बढ़ते हुए डरावना होती है आकर्षक बन जाती है। यह विचार वादा बन जाती है और परमेश्वर की आज्ञाओं में उस वादे को बनाने के बाद पवित्र आत्मा दिव्य दया का दूत सहायक और क्षमा लाएगा। हाँ, जितनी अधिक मेरी आत्मा दुख से भरी हुई थी उतनी ही आनंद से भर उठी है। कोई भी जो पश्चाताप चाहता है हमेशा कर रहेगा। उद्धारकर्ता ने कहा कि उसने इन चीजों को झेला है सभी के लिए जो कि इससे झेलेगा ना पढ़े अगर वे पश्चाताप करें, मगर अगर वे पश्चाताप नहीं करेंगे वे उसी तरह झेलेंगे जिस तरह उसने झेला है। Satisfy the demands of justice and atone for our sins, but he did make this revealing statement.
Behold,
उसके झरने ने झरने में उससे वादा दिया परमेश्वर ने भी जब से महान दर्द के कारण कांप रहा था सभी सुराग से खून निकाल रहा था और दोनों शरीर और आत्मा झेल रहे थे वह दर्द बहुत ज्यादा था कि उसने पूछा कि क्या वह उस दर्द से बच सकता था पांचवा कितना भी दर पश्चाताप में हो दर उतनी बड़ी नहीं होती जितना क्षमा के खुशी एक महान सम्मेलन में अधिकारी निवेदन करते हुए द ब्रिलियंट मोमेंट ऑफ फॉरगिवनेस प्रधान बोइट क्यूपेकर ने समझाया 1847 अप्रैल में ब्रिगम यंग ने पहला नेता के संगठन को आगे चले विंटर क्वार्टर से उसी समय 2500 किलोमीटर पश्चिम की ओर डोनर पार्टी के दिन उधरवती टहल रहे थे उन्होंने उस गंभीर ठंड को ऊंचाई के नीचे बर्फ की टीला में फंसे हुए गुजरे यह विश्वास नहीं करने वाला था लेकिन उन्हें झेलना था एक उत्तरवसी था 15 साल पहले जॉन ब्रीन अप्रैल 23 की रात को वह जॉनसन की बड़ा खेत में चला गया था सालों बाद जॉन ने लिखा वहां रात का समय था जब उन जॉनसन की बड़े खेत में गए थे तो मैंने पहले बार देखा कि वह जल्द सुबह थी मौसम सुहाना था धरती पर पूरी ओर हरी घास थी कोयल था घूम रहा था साफ करता मैंने विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मैं जीवित था वह नजारा को मैंने देखा पहली बार मैं उसके विवेक पर अचंभित रहा था कि कई घंटे में मिट चुकी थी इसके बारे में और ज्यादा सोचने के बाद मैंने तय किया कि वह अचंभित नहीं था मैंने उसी तरह का वारदात को और लोगों के साथ हुए सुना मैंने देखा है उसे जिसने लंबे ठंड के पाप और धार्मिक उपवास के झेला है क्षमा के सुबह के आने से जब सुबह हुई उन्होंने यह सीखा देखो जिसने अपने पाप से प्रश्चित कर लिया है उसी को क्षमा मिलती है और मैं प्रभु उन्हें कभी याद नहीं करता मैं आभारी हूँ ये बतलाने और गवाही देने को कि अस्थाई दुख से मौत और हमारे प्रभु का पुनर्जीवन पश्चाताप की शर्त लागू करता है उद्धारकर्ता के शब्दों को और मैं सबको निमंत्रण देता हूँ कि आनंद जीवन नजदीक है मैं जानता हूँ कि इस निमंत्रण को स्वीकार करके तुम इसमें अभी और सभी समय खुशी पाओगे यीशु मसीह के नाम से आमीन
भाइयों को हम मरा पुरोहित सभा के बारे में याद दिलाते हैं कि जो सम्मेलन केंद्र में आज शाम 6 बजे शुरू होगी टैबरनेकल क्वायर प्रसारण पूरे देश भर में के कल सुबह 9:30 से 10 बजे होगा रविवार सुबह के सभा सम्मेलन तुरंत उसके बाद होगा हम प्राथमिक बच्चों के आभारी हैं जिसने हमें सुंदर संगीत के इस शाम को प्रदान किया और उनको जिन्होंने इस शाम को सभा में बातें की हैं एल्डर एल्टन पेरी जो 12 देवतों की परिषद के हैं वो हमारे इस सभा के अंतिम भाषणकर्ता होंगे उनके भाषण के बाद प्राथमिक बच्चे की गायक मंडली गाएंगी माय हेवनली फादर लव्स मी एंड आई नो माय रिडीमर आई नो माय फादर लिव्स गाने की समाप्ति पर एल्डर ब्रैडली डी फास्टर जो 70 के हैं उनके द्वारा प्रार्थना की जाएगी
भाई मोनसन हमें बहुत खुशी है जो मंदिर के बारे में बताए खास करके मेरे परिवारों के लिए वायोमी में जो थे गिरजाघर दुनिया भर के लिए कुछ करता है जब मंदिर को बनाया जाता है, वो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में एक साधारण परंपरा है। हम सबको अंतर है जाने का मौका देता है। नए मंदिर के सम्मान होने के कुछ हफ्ते पहले हम दरवाजे को खोलते हैं। गिरजाघर के देशी सदस्य और दूसरे विश्वासियों को आमंत्रित दिया जाता है। ये कुछ आश्चर्य कार्य है जो लोगों के लिए मदद करते हैं जो हमारे गिरजाघर को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, उसे थोड़ी सीखने में। लगभग सभी जो नए मंदिर में अनुभव अतिरिक्त में हमारे कई मेहमान को विचित्र और विशोष तरह के महसूस करते हैं। हमारे कई दर्शक को कुछ अनोखा का खास महसूस करते हैं। ये सब साधारण जवाब है दर्शकों के जो हमारे मंदिर घूमने आते हैं, मगर ये सब से साधारण जवाब नहीं है। क्या दूसरों के अलावा ज्यादा अचंभा करता है वो गिरजाघर के सदस्य के मंदिर को घूमने आते? वो अंतिम दिनों को संतों अपने संचल के अनजंबो होकर हमेशा के लिए जाते हैं। गिरजाघर दुनिया भर के ज्यादा आदर को जो रहा है जो पहले नहीं था। संसार महिमा के सदस्य गिरजाघर पर सभी के लिखे जाते हैं। ये वार्तालाप दुनिया भर में भी रहे हैं। गिरजाघर इंटरनेट पर भी अंतर हो मो देता है जो तुम्हें जानते हैं नए ढंग से लोगों के जानकारी बताता है। दुनिया भर में पूरे दिन भर गिरजाघर और उसके शिक्षाओं के विषय में इंटरनेट पर बातें की जा रही है। ब्लॉग्स और संवेक सभा नेटवर्क्स पर उससे जिन्होंने कभी भी न्यूज़पेपर या मैगजीन के लिए लिखा ही नहीं, वो वीडियो बना रहे हैं जो ऑनलाइन पर दिखलाया जाता। ये संदेश हो लोक है दोनों हमारे विश्वास और दूसरे विश्वासी जो यीशु मसीह का गिरजाघर अंतिम दिनों के संतों के बारे में बात कर रहे हैं। वार्तालाप की तरह में बदलाव या समझाता है कि क्यों ये मोमेंट्स है वो पहले ही ज्यादा भी अंतर मिलता है, मगर गिरजाघर बढ़ता ही जा रहा है और आगे बढ़ रहेगा। ज्यादा लोग गिरजाघर के सदस्य के पड़ोसियों और मित्रों और वहाँ गिरजाघर के मुख्य है संसार पहला शिक्षा और सभी स्थान पर भी यह दिखाता है। जो गिरजाघर के सदस्य नहीं है वो ये देखे हैं, वो ये सोचते हैं कि क्या हो रहा है। ये आश्चर्य है कि कई गिरजाघर और अंतिम दिनों के संतों को जान चुके हैं, जबकि गिरजाघर और ज्यादा दिखा ना रहा है वो पर ये उनसे भी नहीं सकते हैं। गिरजाघर के बारे में अदर विश्वास को काम पर नहीं के विचार पर बिना पूछे जानकारी के मूल मानते हैं, पर वहाँ गिरजाघर पर भी बहुत गलत जानकारी और मान्यताओं पर और वो की सिखलाया है। यह सच्चाई प्रावधान जोसेफ स्मिथ के समय से, जोसेफ स्मिथ ने अपने इतिहास को भाग जानता के मान को छोड़ो विचारों के छूट कर देना और सारे परिष्कर्ता को त्याग डाले। यह सही है कि वहाँ हमेशा वे होने जो सही कोई बदल देगी, मगर उनमें से कई जिनके पास गिरजाघर के सवाल नहीं है, ये अच्छे लोग हमें बरी में जानना चाहते हैं। गिरजाघर के बढ़ते हुए दिखना और नाम हमें और उसके सदस्य को आदर्शनों देता है। हम मदद कर सकते हैं लोगों को गलत विचारों को बदलने में और गलत जानकारी को सही करने में, जब हम पता चलाते हैं कि कुछ गलत है तब हम बता सकते हैं कि हम कौन हैं। वहाँ पर कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, जो तुम कर सकते हो गिरजाघर के समझ कर बढ़न के लिए। अगर हम वो उसी भाव से करेंगे और अपने आप को वही तरीके से कहेंगे, उसी तरह से हम मंदिर को दूसरे संचलित करने जाते हैं हमारे मित्रों और पड़ोसियों में के लिए। मुझे कुछ विचारों को बदलने जो हमें से हर एक क्या कर सकते हैं। पहले हमें जरूरी है कि यीशु मसीह के बदलाने हुए पर सच्चाई रहे। हम चाहते हैं कि दूसरे जन्म की हम विश्वास करते हैं वो मानुषों की इतिहास में सबसे जरूरी इतिहास है। उसके जिंदगी में बाइबल की मुख्य सदस्य है कि दूसरे धर्मसारों को जो पवित्र सुसमाचार मानते हैं। पुराने नियम मसीह के बारे में, नया नियम उसके बतलाता है। मोमन धर्मशास्त्र जो उसके जिंदगी के बारे में, वो धरती पर आया, सुसमाचार को बतलाया और सभी मानुषों के मूल है कि सभी परमेश्वर के बच्चे हैं और उसके बारे में सीखे और परमेश्वर के बारे में। उसने फिर अपने जिंदगी को हमारे उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता की तरह दिया। सिर्फ यीशु मसीह के कारण हमारा मुक्ति हो सकता है। ये कारण है कि हम क्यों विश्वास करते हैं कि वो मानुषों के इतिहास में मुख्य इंसान है। हमारे आनंद किस्मत हमेशा उसकी शक्ति से आ जाती है। ये महान है कि उसने विश्वास करने और उसके हमारे उद्धारकर्ता है, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर की तरह स्वीकार करें। हम ये भी विश्वास करते हैं कि वो सिर्फ मसीह के द्वारा महान संतोष, आशा और खुशहाली के पाया सकता है, दोनों इस जीवन और आनंद जीवन में। हमारे सिद्धांत जो मोमन धर्मशास्त्र में सिखलाया गया है बतलाती है कि इस कारण तुम मसीह में दृढ़ विश्वास रहते हुए आशा की आकंत ज्योति में परमेश्वर और सभी मानुषों से प्रेम रखते हुए सदैव आगे बढ़ते रहो। इसलिए कि अगर तुम आगे बढ़ोगे, मसीह के वाणी के पायल पीते रहोगे, अंत में मंसारिक बनोगे, तब सुनो पिता के प्रकार कह रहे तुम्हारे आनंद जीवन मिलेगा। हम यीशु मसीह में अपने विश्वास को रखते हैं और उस पर अपने उद्धारकर्ता मानते, वो हमें आशीर्वाद देगा और राह दिखाएगा। जब हम मरणशाली में जी रहे हैं वो हमें शक्ति देगा और मुसीबतों से समय शांति देगा। यीशु मसीह का गिरजाघर का अंतिम दिनों का संतों के सदस्य अपनी जिंदगी को उसे विश्वास से जीते हैं और जिसका गिरजाघर ये है। दूसरा के लिए अच्छे उद्धार करना बरनो। हमें विश्वास को बदलाना के बाद हमें जरूरी है कि हम पहले तिमोदी में दिया गए सलाह को चले, पर वचन और चलन और प्रेम, विश्वास और पवित्रता और विश्वासियों के लिए आदर बन जाओ। उद्धारकर्ता ने हमें विश्वास के उद्धार कर उन्हें जरूरी बातें कही, उसी प्रकार तुम्हारे उजाले मानुषों के समय जम के वो तुम्हारी बाले करेगी। पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करना। हमारी जिंदगी अच्छाई और गुण के उद्धार होना चाहिए। जब हम उसके उद्धार को दुनिया में करने की कोशिश करते, अच्छे कार्य हम सबसे दोनों उद्धारकर्ता और उसके गिरजाघर को सुधारते हैं और उसके कार्य में। जब तुम अच्छे कार्य को करने में भाग लेते हो, इज्जतदार और सच्चे रहते हो, मसीह का प्रकाश तुम्हारे जिंदगी से दिखलाई देगा। उसके बाद गिरजाघर को मदद के लिए बातें करो। हमारे संधारण जिंदगी में हम कई अवसर पर आशीर्वाद मिलता है, दूसरे के बदलाव में विश्वास करते हैं। जब संगत हमारे व्यक्ति और अनुभविक व्यक्ति पर धार्मिक विश्वास के बारे में जानकारी करते, वे हमारे अमरंत देते हैं। वे गिरजाघर में शायद ये नहीं रुचि देखते हैं, मगर वे हमें और ज्यादा गहराई से। मेरा यह सुझाव है कि उसके निम्रता को स्वीकार करो। तुम्हारे संगतों में तुम्हें सिखलाओ, बतलाओ, समझाओ और उपदेश देने की निम्रता नहीं देते। उनको दोनों दो, अपने धार्मिक विश्वास पर कुछ बतलाओ, मगर उनके विश्वास के बारे में पूछो। उनके रुचि के हाथ को उनके सवालों से जानो। अगर वे ज्यादा सवाल पूछे, वार्तालाप को उनके जवाबों के देने में लगाओ। हमेशा ये याद रखो कि ये अच्छा है कि वे तुमसे सवाल पूछे, नहीं कि तुम उन बतलाओ। कुछ सदस्य गिरजाघर के सदस्य होने को राज की तरह रखना चाहते हैं, उनके पास उनके कारण है। उदाहरण पर शायद वे जानते हैं कि वे स्थान उनके विश्वास को बतलाना लगाना नहीं है। शायद वे घबराते हैं कि वे गलत ना कहा जाए। अगर ऐसा विचार कभी तुम्हारे मन में आए तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपदेश है। जॉन के वचनों को ये याद रखो, प्रेम में भाई नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भाई को दूर कर सकता है। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो और पड़ोसियों से भी, हमें वादा किया है कि हम भी अपने दुख से दूर हो जाएंगे। अगर तुम mormon.org को अपने जल्द ही देखे हो, जो गिरजाघर के वेबसाइट है, उनके लिए जो गिरजाघर के बारे में सीखना चाहते हैं, तुम्हें सदस्य को देख है जिन्होंने अपने बारे में जानकारी दी है, उन्होंने ऑनलाइन पत्री चित्र और बनाया है और बतलाया है। वे अपने विश्वास पर बतलाते हैं, वो अपने विश्वास के बारे में बताते। हमें वे बतलाप मसीह की तरह चाहिए, हमारे आवाज चाहिए, बातें करते हैं, लिखते समय इज्जत और सुशील होने चाहिए। दूसरे, हमें सच्चा खुला रूप से अपने जो कहते हैं सिद्ध रहना चाहिए। हम अपने आप से बचाव नहीं करना चाहते, किसी तरह में जगता नहीं। पॉल ने सुझाया, पीटर ने बताया, पर जैसा तुम्हारा बोलने वाला पवित्र है, वैसा ही भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आज ही बदलाव की तरीका है, इंटरनेट को भी ज्यादा साथ में जोड़ रहा है। हम लोगों जवान बूढ़े को बढ़ावा देते हैं और इंटरनेट को सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने में देते हैं। जब तुम इंटरनेट को इस्तेमाल करोगे, तुम गिरजाघर के बदलाव में भी शामिल हो सके हो। जो आत्मा तुम्हारे बतलाए, अपने विश्वास को इसमें शामिल करने से मना नहीं करो। यीशु मसीह के सुसमाचार संदेश वही है जो तुम दूसरों के साथ कभी भी बताना चाहोगे। समय में जब वो जानकारी हो जाएगी दूसरे मुल्क से, ये दुनिया भर में सबसे जरूरी जानकारी है, वो पर उसकी कीमत है, सवाल की नहीं है। जब गिरजाघर के विषय में बातें करते हैं, इससे अच्छा बनने की कोशिश मत करो। हमें अपने आदेश को जानता हित में नहीं करना है, हमें बतलाप करने के संदेश को सच्चे और सिद्धांत करना है। अगर हम बतलाप को चैनल को खोलेंगे, यीशु मसीह के पुनस्थापित संदेश अपने आप ही प्राप्त होगा। वहाँ पर कभी कभी बड़ी अंतर होती है, गिरजाघर को हम इस तरह से। ये मुख्य कारण है कि हम मंदिर को घूमने जाने देते हैं, मंदिर को संपर्क करने से पहले। मंदिर के अपने आप भक्ति करने वाले सदस्य घूमने जाने वालों को गिरजाघर को उसी तरह दिखलाने की मदद करते हैं जिसकी तरह वे अंदर से देखते हैं। वे गिरजाघर को आश्चर्यजनक काम विस्मयकारी हो की तरह देखते हैं। वे चाहते हैं कि वे दूसरे भी, मैं तुमसे ये कर रहा था कहते हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम यीशु मसीह की पुनस्थापित सुसमाचार के विश्वास और महसूस को निमंत्रण पर बतलाओगे, प्यार के आत्मा और हिम्मत के आत्मा तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। इसलिए उचित प्रेम भाई भय को दूर कर देगा। ये बढ़ावे हुए अवसर का समय है यीशु मसीह के सुसमाचार को दूसरे से बढ़ाने के लिए। हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए कि अवसर पर फायदा उठाना चाहिए कि दूसरे अपने विश्वास को दूसरे से यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ये हमारे स्वर्ग पिता, हम अपने सर झुकाए निम्रता से इस वक्त सस्टेन किया आपके भविष्यता और आपके सभी लीडरों को हम आभारी हैं जो हमने सभी कुछ सीखा और समझा आज.
That these teachings will bless our lives and our families.
जो शिक्षा हमें मिला उसे हमें परिवार के मदद मिले और हम सभी मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते हैं. हम धन्यवाद देते हैं सभी सच्चाई के लिए जो सुसमाचार में है. हमें शक्ति दो ताकि हम सभी के साथ ये सच्चाई को बताएं और आपके पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे. हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन.
This has been a broadcast of the 181st Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a primary choir with children from Pleasant View and North Ogden, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.